भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पाथ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। और फिर सत्रसेना खड़ा करके भगवान ने कह दिया कि हे पार्थ देख लो सत्र सेना में कौन कौन खड़े हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता, इसमें भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, ये तो खास खास आए हैं। सर्वेषां च महीक्षिताम् और बहुत से राजा लोग जिसमें आए हैं, ये सब सामने करे, इनको देख लो। पश्चैतान पार्थ पश्चैतान, हे पार्थ तुम इनको देख लो। संवेतान कुरुनीति, और ये कौरवों के पक्ष में जो इकट्ठे हुए हैं उन सब राजाओं को तुम देख लो। बस यही एक वाक्य भगवान कृष्ण ने इस पहले अध्याय में बोला है। बस इसके आगे पीछे कहीं कहीं आप देखोगे, इसके बाद फिर अर्जुन ही बोलता रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन की चुपचाप बात सुनते रहते हैं और वो कुछ बोलते नहीं। यहाँ ऐसा भी लगता है, एक बार जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने गए। वहाँ जो बातें हुई वो तो और बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बात धृतराष्ट्र ने ये भी कही कि हमको ये समझ में आ गया जो ये युद्ध चल रहा था, युद्ध आप भले ही कहो कि युद्ध जो हो रहा था इन लोगों के बीच में था, यह दुर्योधन के मन से हो रहा था, यह अर्जुन के मन से हो रहा था, यह किसी और लोगों की योजना से चल रहा था, हमें तो बस यही दिखाई देता था युद्ध का संचालक केवल एक ही व्यक्ति है, उसी की इच्छा थी युद्ध हो, और वो युद्ध चला भी रहा था, और युद्ध का जो परिणाम होना था वो भी उसी के हाथ में था, और वो हो तुम। तो राष्ट्र की बुद्धि इस प्रकार से बाद में शायद सुधर गई हो, कुछ समझ में आ गया हो, भगवान कृष्ण की महत्ता समझ में आ गई हो, तो उसने इस प्रकार से इनसे भगवान कृष्ण से कहा। अगर उस बात को आप सही मानो तो ये भी कह सकते हो कि भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन के मन में इस प्रकार का भाव पैदा किया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, क्योंकि ऋषिकेश हैं, उनकी अर्जुन की भी इंद्रियों में वही पास करने वाले हैं, मन बुद्धि में वही पास करने वाले हैं। उनकी इच्छा इस प्रकार की हुई कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले चलेगा, तो फिर सब लोगों को देखे और देखे तो फिर उसके मन में जो कुछ प्रतिक्रिया अपने संस्कारों के अनुसार होनी है वो हो जाए, और उसके परिणाम स्वरूप जो अर्जुन को शिक्षा देनी है वो भी हो जाए। इसलिए सब भगवान की इच्छा से ही दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध भी गया, रथ भी गया, अर्जुन ने भी जाकर के वहां सब उन सबको देखा। और फिर देखने के बाद में भगवान पहले ही जानते थे कि इसकी वासनाएं किस प्रकार की हैं, इन सबको देखेगा तो इसके मन में कैसी प्रतिक्रिया होगी, वो सब प्रतिक्रिया भी भगवान देखते रहे कि कैसे कैसे अर्जुन क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है, कैसी भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, ये सब भी उसी समय होने लगा। आचार्य लोग कहते हैं कि देखो, जैसे मनोचिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्री के डॉक्टर होते हैं, तो वो एक तो डॉक्टर होते हैं शरीर के होते हैं, वो तो शरीर के रोग को देखा, दवा दी उसको, लेकिन मनोचिकित्सक का कार्य ज्यादा कठिन है। उसे मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को उसकी बीमारी को समझना पड़ता है, गहराई तक उसको जाना पड़ता है, और उसको उसका उपचार करने के तरीके भी अलग हैं। जैसे मनोचिकित्सक के कार्य करने के तरीके हैं, उनसे भी थोड़ा आगे बढ़ करके इन अध्यात्म शास्त्र के जो आचार्य गुरु लोग हैं उनका भी इस मनोचिकित्सा करने का कार्य ही है। अपने शिष्यों को, अनुयायियों के, उनका मनोचिकित्सा उनकी करते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका जो है अद्भुत तरीका है, उसके भी अपने नियम हैं। वे जो है वो हर किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होते हैं। जिसके ऊपर वो नियम लागू किए जाते हैं, मनोचिकित्सा जिनकी की जा रही होती है, वो भी नहीं जानते हैं कि कोई हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो तो जब उपचार हो जाए, बुद्धि में परिवर्तन हो, सद्बुद्धि आ जाए, तब हो जाता है कि हमारे साथ जो इस प्रकार का व्यवहार किया गया वो ठीक ही था, जो उपचार हमारा किया गया वो ठीक ही है, बहुत बाद में समझ में आता है। इसलिए अब जैसे भगवान जानते हैं कि अर्जुन का उपचार होना चाहिए, तो उपचार होने के लिए पहले क्या चाहिए कि पहले उसका रोग भड़के, ऐसा कार्य करो कि उसके अंदर जो बैठा रोग है, अर्जुन के अंदर मोह बैठा हुआ है, भगवान जानते हैं वो मोह पहले प्रकट तो हो और उस मोह के कारण अर्जुन व्याकुल तो हो। जैसे रोग इतना भड़क जाए कि व्यक्ति सहन करना मुश्किल पड़ जाए तब अपने आप डॉक्टर की तरफ दौड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा रोग रहा दबा रहा तो कहेगा अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक होगा, परवाह नहीं करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन के रोग को भड़काने के लिए दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन को ले भी जाते हैं और दिखा भी देते हैं कि देख लो ये कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, इन सबको तुम देखो। अर्जुन जब देखता है तो उनको सबको क्या दिखाई देता है, अब आगे देखो जो उसकी दृष्टि कैसी है। अब ये भी एक बात देखो कि देखो देखने को तो सभी देखते हैं, लेकिन देखने के पीछे कोई आंखों से देखना मात्र देखना थोड़े होता है, उसके पीछे व्यक्ति का मन भी होता है, उसके व्यक्ति के पीछे बुद्धि भी होती है, बुद्धि के पीछे व्यक्ति के संस्कार भी होते हैं, चित्त भी होता है, उन सबका भी उसमें सम्मिश्रण होता है, उसके बाद वैसा ही दिखाई देता है। इसको समझाने के लिए कभी कभी आचार्य लोग कह देते हैं कि देखो जैसे कि कोई व्यक्ति के आंखों में जैसा चश्मा लगा दो वैसा ही उसे दिखाई देगा, अगर हरा चश्मा लगा दो तो फिर हरा दिखाई देगा, नीला चश्मा दिखा दो तो नीला दिखाई देगा। ऐसे ही व्यक्ति को जब तक कि निर्विकार शुद्ध आत्म तत्व परमात्म तत्व का अवगाहन नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक वासनाओं के चश्मे लगे हुए हैं। सत्वगुणी वासना का चश्मा लगा हुआ है, रजोगुणी वासना का चश्मा लगा हुआ है, तमोगुणी वासना का चश्मा लगा हुआ है, ये सब चश्मे का काम करते हैं। और ये चश्मा कहाँ लगा हुआ है, बुद्धि के ऊपर, और फिर उसकी थ्रू बुद्धि देखती है, जब उसे दिखाई देता है तो वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि चश्मे का रंग होता है, माने शुद्ध साध नहीं दिखाई देता। इसके ऊपर खूब विचार किया गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कोई अपने भारतवर्ष की बात आचार्यों की नहीं है, सारे विश्व के जो विद्वान हैं उन सब लोगों का यही कहना है। पश्चिम के लोगों ने भी इस प्रकार से कहा है कि देखो जो कुछ हम देखते हैं इसके दो भाग कर लो, एक नॉमिना और दूसरा फिनोमिना। जो कुछ हम देखते हैं दैट इज फिनोमिना, और जो वहाँ विद्यमान है वो नॉमिना है। हमें फिनोमिना तो हमें दिखाई देता है, नॉमिना तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। रियली वहाँ क्या है उस बात को हम नहीं देख सकते, हम तो अपने जैसी आंखों से मन बुद्धि से हमें जैसा दिखाई देता है वैसा ही हम जान पाते हैं। नॉमिना फिनोमिना करके उन्होंने भेद किया, अपीयरेंस रियलिटी एंड अपीयरेंस। खूब विचार हुआ, एक नहीं बहुत लोगों ने विचार किया है, ब्रेडले ने भी किया है, और ये फ्रांस का जो दार्शनिक हुआ उसने भी किया, और जर्मनी के दार्शनिक, उनके तमाम लोगों ने इस प्रकार से विचार किए, और इस प्रकार से ये कांट का ही विचार प्रारंभ हुआ, इमैनुअल कांट से, उसी ने ये फिनोमिना नॉमिना करके रखा और कहा कि जो कुछ हम देखते हैं वो केवल दृश्य जगत है, जो कुछ हमारी दृष्टि में दिखाई देता है दृष्टि सृष्टि है। अपने यहां भी इस प्रकार विचार चला कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आगे रचना क्या है, सृष्टि कैसी दिख रही है, जैसी हमारी दृष्टि है। दृष्टि के माने ये आंखें नहीं, दृष्टि के माने बुद्धि की दृष्टि, अंतर्दृष्टि, वो सबकी अंतर्दृष्टि एक सी नहीं होती है, पृथक पृथक होती है। अब वो व्यक्ति को किस प्रकार का क्या दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है। रजोगुण होगा तो व्यक्ति में राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो राग द्वेष की दृष्टि दूसरी होगी। सत्वगुण होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो उसको जो दिखाई देगा उसकी दूसरी दृष्टि होगी। ये निंदा स्तुति कहां से आती है, रजोगुण से आती है, राग द्वेष से आती है। सत्वगुण होगा, राग द्वेष नहीं होगा, दृष्टि दूसरी होगी, न निंदा न स्तुति, छुटकारा हो गया। इस प्रकार से ये सब धीरे धीरे करके उदाहरण है उसके, विचार करो देखो, ये सब मनोविज्ञान समझो। ये अध्यात्म विद्या आपको बता चुके 99% मनोविज्ञान है, और ये समझना मुश्किल नहीं है। ध्यान दें, विचार करें, ये सब सिद्धांत जीवन के सत्य के दिखाई देंगे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उन्हीं के से मनोवैज्ञानिक नियमों से ही व्यक्ति का जीवन संचालित होता है, उसको वो सब समझ में आ सकते हैं। लेकिन अपने भीतर देखने का अभ्यास हो व्यक्ति को तब। तो अर्जुन को भी वहां पर जो दिखाई देने लगा तो अर्जुन के मन में रजोगुण था पहले से, और उस रजोगुण के कारण मोह भी था, और उस मोह की दृष्टि जब उसको देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि सब हमारे बंधु बांधव लोग ही सब खड़े हुए हैं। उसे ये नहीं दिखाई दिया कि सब युद्ध करने आए हैं, जैसे कि पहले वो सोच रहा था। एक श्लोक में बोला कि दुर्योधन दुर्बुद्ध है, उस दुर्बुद्धि के अधर्म का पक्ष लेकर के बहुत से राजा लोग आए हैं, ये तो एक बात थी पहले। लेकिन जब सामने और देखता है उनको सबको तो दिखाई क्या देता है कि सब हमारे रिश्तेदार ही हैं, सब अपने प्रिय बंधु बांधव ही हैं, ये दिखाई देने लगा और मोह उत्पन्न हो गया उसके साथ में।